الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى آج هم سورة طه آيات نمبر 105 سے 123 تک کریں گے. دیکھتے ہیں اپنے سبق کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں. اب یہاں پہ ہم پچھلے سبق کے ساتھ ملائیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا لاسٹ سبق میں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کیا حالت ہوگی مجرموں کی. زرقا فرمایا نا، نیلی ہو جائیں گی ان کی آنکھیں، یا نیلے پڑے ہوں گے، اور پھر کیسے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کتنا عرصہ ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں، اور یہ پوری دنیا کی قدر و قیمت یا اس کی جو ایج ہے اس دنیا کی، ان کو جس میں وہ رہے، جتنی عمر وہ دنیا میں گزار کے آئے، وہ ان کو اتنی تھوڑی لگے گی کہ ایسے لگے گا بس ایک دن یا پھر شاید دن کا کچھ حصہ ہی رہے تھے، اور تو کوئی بھی نہیں، ہم تو زیادہ رہے ہی نہیں، تو زمانی اعتبار سے بھی کم لگے گی، اور ویسے بھی ویلیو کے اعتبار سے بھی بہت ہی حقیر لگے گی کہ کچھ بھی نہیں تھی وہ. تو جیسے انسان ایک خواب دیکھ کے اٹھ جاتا ہے، اور بس تھوڑی دیر کا ہی خواب ہوتا ہے، خواب ایسے تو نہیں ہوتا کہ چلتا ہی چلا جائے. اسی طرح انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو یہ دنیا اتنی چھوٹی لگے گی، وہی دنیا جس کے پیچھے ہم اتنا پاگل ہو رہے ہیں کہ یہاں کے غم اور یہاں کی خوشیاں اور یہاں کی فکریں ہمارے لیے ہر چیز بن گئی ہیں، اور ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. وہی دنیا اتنی حقیر محسوس ہوگی، اتنی کم حیثیت کی محسوس ہوگی، کہ اب انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، میں ایسے ہی اس کے پیچھے اتنا پاگل ہوتا رہا، میں کیوں اس کے غموں میں پریشان رہا، میں نے کیوں اس کی خوشیوں کو سب کچھ سمجھ لیا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ دنیا میں لوگ جب خوش بھی ہوتے ہیں تو خوشی میں بھی اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آخرت ہی نہیں. ایک ہمارے ٹیچر بڑا اچھی، انہوں نے ایک بات بتائی تھی، وہ کہتے ہیں جب ہم جوان ہوتے تھے تو ہمارے والد ہمیں کبھی کہہ کہہ لگاتے دیکھ لیتے تھے تو آ کے کہتے تھے کیا بات ہے، کیا جہنم سے آزادی مل گئی ہے تم لوگوں کو جو اتنا ہنس رہے ہو. تو واقعی انسان سوچے تو اس دنیا کی کوئی بھی خوشی پائیدار نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، لیکن سٹل ہم دیوانے ہو جاتے ہیں. اور یہاں کا کوئی غم بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اتنے ہلکان ہو جائیں کہ ڈپریشن میں ہی چلے جائیں، کیونکہ اس کی خوشیاں بھی ختم ہو جانے والی، اس کے غم بھی ختم ہو جانے والے. جو غم میں ہے وہ بھی سوچ لے کہ یہ زندگی تو پوری زندگی میری، چاہے 100 سال کی ہی کیوں نہ ہو، وہ بل تو پتہ ہی نہیں کسی کو کتنی ہوگی، کل بھی رہنا یا نہیں رہنا، لیکن جو بھی غم میں ہے وہ یہ سوچ لے کہ یہ زندگی پوری میری ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے، میں کیوں اتنی پریشان ہوتی ہوں. اور جو بہت ہی خوشی میں آپے سے باہر ہو رہے ہیں نا، وہ بھی یہ سوچ لیں کہ یہ پوری زندگی بھی میری کتنے دن کی خوشی ہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، پھر میں کیوں اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں اور اپنے اوپر گناہ چڑھا لوں. تو اس کے اوپر ہی ساری بات چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو وہ پوچھتے ہیں کیا پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے. फकुल यंसिफुहा रब्बी नसफा, तो कह दीजिए उखाड़ देगा मेरा रब इनको, उखाड़ देना, जैसे उखाड़ दिया जाता है किसी चीज को, उखाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, इस तरह इन पहाड़ों को कर देगा, जैसे दूसरी जगह आता है कि धुनकी भी रुई की तरह हो जाएंगी। अब पहाड़ों की ही बात क्यों, क्योंकि यही सबसे सख्त मखलूक है जो सब मजबूत नजर आती है। आप देखिए बिल्डिंगें वगैरह भी जलजलों से गिर जाती हैं, उनमें क्रैक आ जाते हैं, सैलाब आए तो उनसे आप देखेंगे फ्लडिंग से कितनी बिल्डिंग्स गिर गई, और ऐसे था जैसे तिनके हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह खड़े रहे, कोई पहाड़ नहीं आपने गिरते देखा होगा। मगर वो कैसा सिलसिला होगा और वो कैसा दिन होगा कि पहाड़ जैसी मजबूत तरीन मखलूक जिसकी जड़ें पता नहीं जमीन के कितने नीचे होती हैं, वो तक अगर रेजा रेजा होकर टूट जाएंगे तो क्या हाल होगा दूसरी चीजों का और इंसानों का। इंसान तो खैर बहुत ही छोटी सी मखलूक है, ये तो जब बड़ी बड़ी इमारतें तिनकों की तरह बहने लगती हैं तो इंसान की क्या मिजाल और क्या हालत होगी। छोटे छोटे दुनिया के अंदर जलजले आते हैं और छोटे छोटे सैलाब आते हैं, तो तब भी देखें कैसे बहते हुए चले जाते हैं, ऐसे लगता है तिनके हैं बिल्कुल, है ना। आपने देखी होंगी तस्वीरें वीडियोस, और वो कयामत का सिलसिला कैसा होगा जिसमें इंसानों की हालत क्या होगी। तो दूसरा इसका माना एक और भी किया गया, वो ये कि यहाँ पे एक वाहिद मुकाम है कुरान में जहां पे यसअलूना के बाद फकुल आया है, फकुल, वरना हर जगह क्या आता है कुल। आप देख लें आप सूरह बकरा में भी यसअलूना का पढ़ के आए हैं, उसके बाद कुल आता है, कह दीजिए, यहाँ पे आया फकुल, ठीक है। तो इससे इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि ये अभी उन्होंने सवाल नहीं किया, मगर अल्लाह ताला जानता है कि वो ये सवाल करेंगे, लिहाजा जब वो ये सवाल करें तो आप कह दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं, ये कहेंगे इस बारे में कि ये पहाड़ों का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने जितनी मादी दुनिया की चीजें हैं ना, ये जितना मटेरियल है, कयामत तक इंसान जितनी भी बड़े कॉन्क्रीट्स खड़े कर ले, जो मर्जी मजबूत से मजबूत चीज बना ले, जब जिबाल की बात कर दी गई, पहाड़ों का बता दिया गया कि इनका क्या हाल होगा, उससे हर चीज को आप कयास कर लें, हर चीज को आप उसके ऊपर रख लें कि जब पहाड़ ऐसे होंगे तो ये बिल्डिंग, मेरा घर, ये दरख्त, ये बड़ी बड़ी मजबूत चीजें, ये पुल, ये सड़कें, ये गाड़ियां, ये ट्रक, ये इनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला उस दिन की तबाही को हमारे सामने रख रहा है कि उस दिन की तबाही बहुत बड़ी होगी, जिसका इंसान यानी एक उसकी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकती। फयदरुहा काअन सफसफन, फिर छोड़ देगा इसको हमवार चटियल। हाँ, की जमीर किस तरफ जा रही है, अब पीछे तो कोई ऐसी चीज नहीं, पहाड़ों की बात थी। असल में बाज दफा जमीर का पीछे मर्जे नहीं होता, वो किस तरफ लौट रही है, ये इसलिए होता है जब बात बिल्कुल वाजे हो, फिर बताने की जरूरत नहीं होती किस तरफ को जा रही है ये जमीर, यानी जमीन, या दरुहा इस जमीन को अल्लाह ताला छोड़ देगा प्लेन फ्लैट, कि ना इसमें कोई ऊंचाई होगी ना कोई नीचाई होगी, बिल्कुल सीधी कि दूर दूर तक नजर आए। आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे बिल्कुल फ्लैट जमीन, एक एक जमीन होती है ना जहां पे कहीं ऊंचाई कहीं नीचाई होती है, कहीं कुछ, एक बिल्कुल फ्लैट, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कोई दरख्त, ना कोई घर, ना कोई टीला, ना कोई गढ़ा, कोई भी ऐसी चीज नहीं, वहां पर इंसान खड़े होंगे, इस जमीन को खींच के बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा, रोटी की तरह बिल्कुल होगी, ताकि लोग जब वहां पे खड़े हों तो उनको कोई जगह छुपने की ना मिले, कोई जाके किसी चीज के पीछे ना खड़ा हो, सबके सामने सारी इंसानियत होगी। ला तरा फीहा इवजा वला अमता, और ना तुम देखोगे इसमें कोई टेढ़पन नहीं होगा, कोई इवज नहीं होगा, और ना कोई ऊंची जगह होगी, ना कोई टेढ़ा इधर उधर कोई रास्ता जा रहा है, ना कोई टीला ऐसा है, बुलंदी ऐसी है, जब पहाड़ ही नहीं है तो टीले और वगैरह क्या होंगे। अब देख लें कि ये सीन दिखाया जा रहा है हमें कि जिस दिन अल्लाह ताला ने जमा करना है उस दिन जमीन की हालत क्या होगी, उस दिन इंसान कहाँ खड़े होंगे, उस दिन इनका क्या हाल हो रहा होगा कि हर चीज मिट चुकी है, सब बुलंदियां मिट चुकी, सिर्फ इंसानों में ही नहीं, इंसानों की तो जो अमीर और गरीब और पढ़ा लिखा और अनपढ़ और जो भी दुनिया के मयार हैं, बादशाह और फकीर और वो, इन सब के फर्क मिट जाएंगे, जमीन के भी फर्क मिट जाएंगे, सब सामने नजर आएंगे जब बिल्कुल चटियल मैदान होगी। और उस वक्त क्या होगा, यौम इज़िन यत्तबिउन अद्दाई, उस दिन वो पैरवी करेंगे दाई की। दाई कौन होता है? दावत देने वाला, पुकारने वाला, आवाज देने वाला, उस दिन उसको फॉलो करेंगे। यत्तबिउन, मैंने आपको इसीलिए इसका माना बताया कि इत्तेबा जो होती है ना, वो इतना क्लोजली फॉलो करना होता है कि एक एक कदम के ऊपर आप कदम रख के चल रहे हैं। अब देखें कि एक आवाज होगी, सारी मखलूक उसके पीछे चल रही होगी, उसके पीछे दौड़ रही होगी और एक ही तरफ चली जा रही होगी। ला इवा जला हूँ, कोई टेढ़पन नहीं होगा, यानी कोई बंदा कहे कि अच्छा चलो मैं कि कहीं खड़े होके कुछ पानी ही पी लूं, थोड़ी देर मेरे से तो नहीं इतना चला जाता, यहाँ पे हम कितनी जल्दी थक जाते हैं, सोचते तो थोड़ी देर के बैठ जाती हूँ फिर उठ के चलूंगी, कोई सस्ताने के लिए बैठ जाए, कोई थोड़ा रेस्ट ले ले, कोई इधर उधर देखना शुरू कर दे, कहीं पे भी लोगों को चला रहे होंगे, कोई किधर चल पड़ेगा, एक लाइन भी हम सीधी नहीं बना सकते, कोई कहीं जा रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, वहां पे ऐसा नहीं है, ऐसे बिल्कुल सारे एक आवाज के पीछे चलते जा रहे हैं, कोई कुछ देखने के लिए खड़ा नहीं होगा, फोकस से चल रहे हैं। अब यही फोकस, यही दाई कुरान था ना दुनिया के अंदर, चाहिए तो ये था कि इस पुकारने वाले की पुकार को सुना जाता और इसको ऐसे फॉलो किया जाता, दुनिया की जिंदगी में तो हम नहीं फॉलो करते, उस दिन जब एक आवाज होगी ना सब फॉलो करेंगे, किसी की मिजाल नहीं होगी कि कोई कहे कि मैंने नहीं आना, मैं तो मेरा मूड नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मैं क्यों आऊं। आप यहाँ पे किसी को भी बुला लें किसी भी मजलिस में, तो वो आधे लोग उनमें से कहेंगे आज मेरा फलान चीज हो गई, आज मेरा ये हो गया मसला, उस दिन कोई किसी का मसला नहीं होगा कि वो एब्सेंट हो जाए, किसी को कोई ऐसा बहाना नहीं होगा कि वो बहाना बना के इधर उधर निकल जाए। तो वही लोग जो दुनिया में इनकार करते थे, बहुत बिजी रहते थे ना कि हम बड़े मसरूफ हैं, हम तो नहीं इसकी पुकार पे लब्बैक कह सकते, हम नहीं इसकी तरफ आ सकते, वो भी कैसे चुपचाप फॉलो कर रहे होंगे, वो जो पसंद नहीं करते थे इस रास्ते को अल्लाह के, वो भी लिसन एंड ओबे कर रहे होंगे, समयना व अताना करेंगे, हमने सुन लिया हमने मान ली, कैसे फरमा बरदार है ना। उस दिन इंसान की फरमा बरदारी की इंतहा देखें आप, कि इत्तेबा कर रहा होगा उस आवाज का, मगर टू लेट, टू लेट। अल्लाह अकबर। और वखशअतिल अस्वात, और जो आवाजें होंगी वो दब जाएंगी, ले रहमान, रहमान के आगे, यानी इतना खौफ होगा, इस कदर परेशानी होगी, जाहिर ही बात है जब सबको ये पता चल जाएगा कि आ गया वो दिन। देखिए जो इस कयामत के दिन को नहीं भी मानते, जानते वो भी हैं कि लोग कहते हैं कि एक डे ऑफ जजमेंट है, चाहे माने चाहे नहीं माने, इल्म सबको है कि जी फलां कहते हैं हम नहीं मानते, लेकिन कुछ नहीं होना उस दिन, और हर एक के पास एक कॉन्सेप्ट जरूर है कि हाँ कहा जाता है, वो माने या ना माने हर एक जानता है, और वो मुसलमान जो कहते हैं हमारा इसके ऊपर ईमान है, लेकिन उनकी जिंदगियां इसकी कोई भी गवाही नहीं देती, जिंदगियां बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे कि कोई दिन है ही नहीं पूछ का, हिसाब का कोई दिन नहीं, ऐसे जिंदगियां गुजार रहे हैं। उस दिन हालत क्या होगी कि रहमान के आगे आवाजें पस्त होंगी, इतनी पस्त होंगी कि फला तस्माउ इल्ला हमसा, कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा सिवाय हम्स के। हम्स इस वर्ड से ही आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि हम्स कैसी आवाज होगी। हम्स वो आवाज है जो बिल्कुल धीमी है, जो बिल्कुल खफी आवाज, कुछ नहीं सुन रहा इसलिए कि घबराहट इतनी ज्यादा है। आप यहाँ पे देखें, अगर 10 लोगों को बिठा देना मस्जिद में, आप देख लें, इवन मस्जिद में जहाँ जो इबादत की जगह, जहाँ पे हमें बिल्कुल बहुत रिस्पेक्टफुली जाना चाहिए, वहां पे भी बार बार कहना पड़ता है कि खामोश हो जाएं। इवन जुमे के खुतबे में बाज लोग बातें करने से बाज नहीं आते, हालांकि इतना गुनाह है उस वक्त बात करना, लेकिन बात हमने जरूर करनी होती। तो यहाँ पे चुप कराना लोगों को, 10 लोग जमा हो जाए उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। और वहां पे पूरी मखलूक खड़ी हुई, इंसान और जिन सब खड़े हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं है, इसलिए कि कोई होश ही नहीं है। आवाज क्या है? हम्स है सिर्फ। और हम्स के माने हजरत इब्ने अब्बास ने किए हैं, कदमों की आहट, यानी मैदाने हशर में सिवाय कदमों की आहट की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। अल्लाह अकबर। इसलिए कि जब इंसान चाहे हल्का हल्का भी चले ना, कोई आपने हील नहीं भी पहनी हुई, लेकिन हल्का हल्का भी चले तो आप मुंह फेर के भी बैठे हुए ना, कहीं से आपको एक हल्की सी आवाज आती है, वो हम्स है। आपको पता चलता है कि कई कदम आ रहे हैं मेरे करीब, वो हम्स है। क्या वो दहशत होगी कि किसी को चुप कराने के लिए कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ, कोई पोस्टर बना के नहीं खड़ा हुआ नो टॉकिंग, कोई ये नहीं कह रहा अपने सेलफोन बंद कर दो, कोई कोई किसी किस्म की आवाज नहीं। हालांकि जब इंसानों के ऊपर घबराहट होती है तो वो क्या करते हैं, वावेला करते हैं, शोर करते हैं, ओ फलान ने मुझे पकड़, फलान मेरी मदद कर, ओ फलान आ जा, फलान चल, हाय 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 अम्मा, हाय फलान, हाय हाय करते हैं ना। लेकिन क्या बात होगी, घबराहट का आलम सोचें क्या होगा, कि इंसानों के मुंह से एक आवाज भी निकल नहीं रही होगी। कभी कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह घबराहट इतनी ज्यादा होती है ना, अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, तो कुलूब जो होंगे, कुलूब वो हनाजिर में आ रहे होंगे, हलक में आ रहे होंगे, जब ये ना कलेजे मुंह को आ रहे हों, दिल ऐसे लगे कि सीने में नहीं धड़क रहा, यहां धड़क रहा हलक में, तो आवाज कहां से निकलेगी। अल्लाह हू अकबर। तो ये जो जो पुकारने वाला होगा, जो दाई होगा, वो कौन होगा? बास कहते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम होंगे, बास कहते हैं कि कोई और फरिश्ता होगा, बास कहते हैं रसूल होगा, जो भी होगा, मगर एक पुकारने वाला है, उसकी पुकार के पीछे सारे जा रहे हैं। हो सकता है इसराफील अलैहिस्सलाम ही सूर फूंक रहे हों जिससे कि पीछे सारे जा रहे हैं, सारे अटेंशन से बिल्कुल फर्मा बरदार बन के चल रहे हैं, और किसकी तरफ? लिर रहमान, रहमान की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें, इतना खौफ का मंजर है, और नाम अल्लाह ताला का रहमान आया है, ये नहीं आया कहार की तरफ जा रहे हैं, जब्बार की तरफ जा रहे हैं, वो जो बहुत गजबनाक है उस दिन, उसकी तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं आया? रहमान क्यों आया? इसलिए ये बताने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी इतनी मेहरबानी है, उसकी इतनी रहमतें, शफकतें तुम एक्सपीरियंस करते रहे, तुम पे मेहरबानियों की बारिश होती रही, लेकिन तुम मुसलसल इग्नोर करते रहे, तुमने तवज्जो ही नहीं दी, उस मेहरबान को माना ही नहीं, तुमने फायदा ही नहीं उठाया, तुमने जाना ही नहीं। वो तुम्हें सजा तो देना नहीं चाहता, वो तो रहमान है, लेकिन तुमने उसकी रहमतों को समझ लिया कि खुली छुट्टी मिल गई, वो तो रहमान था, और तुमने कैसे नाजायज फायदा उठाया इस चीज का। वो तो तुम्हें अजाब में नहीं डालना चाहता, तुमने उसकी रहमान की रहमत से भी ये नहीं समझा कि मैं इसके आगे देखें कोई बहुत मेहरबान हो, बहुत बड़ा आपका मोहसिन हो, बहुत आपका खैर ख्वाह, बहुत मोहब्बत करने वाला। जो लोग अच्छी तबीयत के हों वो तो फिर कहते हैं इसका एहसान है हमारे ऊपर, वो फिर उससे बेवफाई नहीं करते। और बाज लोग होते हैं वो उसी शफकत और मेहरबानी का नाजायज फायदा उठाते हैं, या अभी ये मेहरबान है हम और अकड़ के दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला इतना रहमान है, चाहिए तो ये था कि तुम उसकी रहमत को जानते समझते और उसके आगे और झुक जाते, मगर उस रहमान की रहमत को भी तुमने खुली छुट्टी समझ लिया और तुमने उसकी नाजायज फायदा उठाया उसकी मेहरबानियों से। और ये भी पता चलता है कि उसको कोई शौक नहीं है कि वो तुम्हें सजा दे, वो तो रहमान है। तो अब सीधे चले आ रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, सीधे सब हो गए ना अब जो दुनिया में सीधे नहीं होते थे, कैसे खिंचे चले आ रहे हैं एक आवाज के पीछे, जब दुनिया में भी तो आवाजें दी गई थी तुम्हें, दुनिया में तो मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, सुनना ही नहीं चाहते थे, और आज अच्छा भला सुन भी रहे हैं मान भी रहे हैं, और किसी की मिजाल नहीं कि कुछ बोले। देखिए यही फर्क है ना, जो इस दुनिया में रहते हुए कयामत के दिन का यकीन कर ले और उसको मान ले ऐसे कि जैसे वो उसको देख रहा है, अल्लाह ताला ने देखे पूरी पूरी उसकी पिक्चर हमारे सामने कुरान में रख दी है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता उस दिन क्या होना, मुझे क्या पता कि ये होना था, मुझे पता होता तो मैं बहुत कुछ कर लेती, नहीं कोई कह सकेगा, इसलिए कि सब चीजें खोल के रख दी गई। इवन यहां तक बता दिया गया कि उस दिन अस्वात का क्या हाल हो, आवाजों का क्या हाल होगा, उस दिन का सीन कैसा होगा, उस दिन क्या चीज आपके कानों में पड़ रही होगी, कौन सी आवाज पड़ रही होगी, हम्स के सिवा कुछ नहीं होगा, ये सब बता दिया गया ना। जिसने इसके ऊपर यकीन करके आज अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया वो कामयाब है, वरना उस दिन तो फिरौन भी बड़ा फरमाबरदार होगा, वो भी जा रहा होगा, उस दिन जो शयातीन जिन्नात हैं वो भी फरमाबरदार हो जाएंगे, तो मेरी और आपकी फरमाबरदारी कौन सी बड़ी चीज है, क्या कारनामा कर दिया अगर उस दिन फरमाबरदारी से चल पड़े, और अगर उस दिन आवाजें बंद हो गई दब गई अल्लाह के आगे, तो कौन सी बड़ी कारनामे की चीज है। उस दिन तो अबू जहल की भी आवाज नहीं निकलनी, अबू लहब की आवाज भी नहीं निकलनी, तो मैं और आप क्या चीज है। बड़े बड़े फिरौन और नबरूद भी आजिज बन के खड़े होंगे, बात तो तब है, मानना तो आपको और मुझे तब जाए कि जब हम यहां पर अपनी आवाजों को दबा दें अल्लाह की आवाज के आगे कि ये अल्लाह तू और रहमान है, तू मेहरबान है, तेरे तो मेरे ऊपर इतने एहसानात है, मैं अपनी आवाज को रेज कैसे कर सकती हूँ तेरे आगे। और रेज करना पता है क्या होता है, जब अल्लाह के हुक्मों के आगे हम अपनी आवाजें बुलंद कर दें कि अल्लाह का हुक्म तो ये पड़ा हुआ है मैं नहीं मानूंगी, मेरी मर्जियां, मेरा दिल नहीं करता, जब मेरी आवाज बुलंद होने लगे, मेरी ये मिजाल नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में, वहां जाके तो दब ही जानी आवाजें, पता तो चले यहां पे दबा के दिखाई, वहां तो सभी चल पड़ेंगे एक आवाज के पीछे, एक दाई के पुकारने के पीछे, पता तो हमारा तब चले ईमान का जब हम यहां पर एक दाई की आवाज के पीछे फरमा बरदार होके चल पड़े, कोई चूं चरा नहीं, कोई मैं ना मानू नहीं, कोई मेरी मर्जी नहीं, कोई अभी नहीं करना, कोई नहीं उस दिन कहेगा हाँ मैं कल आ जाऊंगी, अभी नहीं मैंने आज नहीं आना, आज यहाँ पे तो कहते ना कल करूंगी कल करूंगी कल करूंगी, वहां पे तो नहीं कोई दाई की आवाज के पीछे कहेगा कल आऊंगी, आज नहीं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मैं थकी पड़ी हूं, आज मेरे पास और काम है, कोई नहीं कहेगा। तो बात मेरी और आपकी शाबाशी की तो ये है, यहां आज मान के दिखाइए, अल्लाह अकबर, जो आज यहां मान के दिखा देगा वो ही कामयाब हो जाएगा, वरना अल्लाह ने तो मनवा ही लेना, फिक्र ना करो। और ये ना समझना कि वो पकड़ नहीं सकता, ये ना समझना कि वो आपको दबा नहीं सकता, ये ना समझना कि हमारी आवाजें इसी तरह खुली रहेंगी और ऐसे ही हम अपनी मर्जियां चलाते रहेंगे। नहीं, एक दिन वो भी आ जाना कि आवाजें दब जानी, फिर क्या करोगे। इसीलिए तो वो बड़े असलाफ हमारे कितना डरते थे, इतना डरते थे कि वो तो इस चीज से भी डरते थे कि हाय हम कोई ओहदा ना कबूल कर ले, कि हमारे ऊपर इख्तियारात, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई तो उसके बाद कयामत के दिन हम क्या जवाब देंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आते ना, वो जब खलीफा बने थे इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए कि मैं मुझे खलीफा बना दिया गया, मैं और ये जिम्मेदारी उठाऊं, मैं कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। और कहते थे कि मशरिक और मगरिब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसका मुझ पे हक ना हो और जिसका हक अदा करना मुझ पे फर्ज ना हो। मिंबर पे खड़े हो गए थे, खुतबा दिया था, लोगों मुझ पे खिलाफत का बार डाल दिया गया, मुझसे राय नहीं ली गई, मुझसे नहीं मशवरा किया गया। तो जिसको तुम चाहो खलीफा बना लो, ये मेरी बैत करना तो तुम्हारे पर जरूरी नहीं है। तो लोगों ने कहा हमने तो आपको ही खलीफा बनाना है, हम आपकी खिलाफत पे ही राजी हैं। और उसके बाद देखें चंद साल जिंदगी पाई और इतने परेशान रहते थे, इतने परेशान रहते थे कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं क्या आखरत में जवाब दूंगा, मैं क्या करूंगा। ईशा के बाद मस्जिद में बैठ के दुआएं करते, रोते जाते। एक दिन बीवी ने पूछ लिया, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक ने पूछ लिया कि क्यों क्यों आप रोते हैं इतना। कहते हैं कि मैं इस उम्मत के छोटे बड़े स्याह सफेद इस सब का मालिक हूं, फिर बेकस मोहताज और ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं तो मैं सोचता हूं कि अल्लाह ताला इनके बारे में मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या कहूंगा, मुझे अपनी जान का खौफ आता है। फिर आंसू जारी हो जाते थे। तो कहते थे मैं जितना याद करता हूं उस दिन को मेरा खौफ बढ़ता जाता है। तो उनकी बीवी कहती थी कि लोग और दूसरे भी लोग थे, और ये नहीं था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उनसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हो या उनसे ज्यादा रोजे रखते हो, मगर कहती हैं लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह अकबर। और एक दफा सफर में जा रहे थे, असबाब पीछे रह गए, सामान पीछे रह गए, और आपके और आप और आपके साथी आगे निकल चुके थे, तो एक जगह ठहर गए और आपने देखा कि सफर करने वालों में से जो जो शख्स अपना सामान पहले रवाना कर चुका था उनके सामान पहुंच गए थे। ये देख के रो पड़े, तो इनके चचा साहब ने इनसे रोने की वजह पूछी, फरमाया इसी तरह कयामत के दिन जो शख्स अपना सामान पहले बेच चुका होगा वो उसको मिल जाएगा, और जिसे नहीं भेजा होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका सामान पीछे रह गया था ना, जिन्होंने पहले भेज दिया था उनका पहुंच गया। वो देखिए हर चीज के अंदर से ना वो अपनी आखरत को याद करते थे, हर चीज के अंदर उनको ये नजर आता था कि हाय मेरा क्या बनेगा उस दिन। दुनिया की चीजों से भी वहां से रिलेट करते थे। अल्लाह अकबर। ऐसे ही तो नहीं, फिर हजरत अबूबकर सिद्दीक भी देख के परिंदों को देखते थे, फरमाते थे परिंदों तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारा आखिरत में कोई हिसाब किताब ही नहीं। हजरत उमर ऐसे ही तो नहीं उठा के तिनके को देख के कहते थे काश मैं एक तिनका होता, मेरा हिसाब ना होता। अब इनको पता चल रहा ना, इसलिए आवाजें ही इनकी बंद हो गई, आवाज ही नहीं निकल रही किसी की। क्यों? इसलिए कि इतना खौफ है, अरे अब क्या जवाब देंगे, अरे अब क्या होगा। वो जो चीजें कभी आप पढ़ते किसी क्लास में आपने सुनी और उसके बाद चलो किताब बंद कर दी और क्लास से उठ गए और उसके बाद फिर दुनिया में मशगूल हो गए, वो रियलिटी बन के जब सामने आएगी ना तो इंसान की सिट्टी गुम हो जाएगी, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि अब करूं क्या, हाथ पैर कांपने लगेंगे। अल्लाह हु अकबर। किसी की मिजाल होगी कि वो कुछ बोले, बोलने का उसके अंदर आवाज ही कहां से लाए बोलने के लिए, और कहे तो कहे क्या। अल्लाह अकबर। कहते हैं सांस की आवाज होगी, सिर्फ सांस की आवाज बस। बहुत सारे लोग खड़े हों तो सांसों की भी तो एक आवाजें होती है। अब फिर इंसान वहां पे पहला ख्याल ये आता है कि हाय अब क्या, अपने पास तो कुछ है नहीं, तो कोई किसी को तलाश करूं, कोई तो हो जो मुझे बचा ले आज। फौरन यही आता है ना, इंसान मुसीबत में पड़ता है तो इस एकदम से यही ख्याल सबसे पहले आता है, हाय आप कौन बचाएगा, हाय आप किसको कहूं। अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त डिपिक्ट किया है इसको कुरान पाक में, एक ऐसे उनके कलेजे हलक में आ रहे होंगे, दिलों की हालत क्या होगी, कैसे आंखें होंगी फटी की फटी होंगी, आवाजों का क्या हाल होगा, अल्लाह अकबर, लोगों के अहवाल क्या होंगे, पसीने से हालत क्या हो रही होगी, नंगे पैर नंगे बदन कैसे खड़े होंगे। बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल दिन है, बहुत मुश्किल दिन है। इसीलिए हमारे असलाफ इतना डरते थे, इतना डरते थे। हमें भी अल्लाह ताला इस दिन की फिक्र लगा दे, इस दिन के का ख्याल लगा दे हमारे, और इसको हमारी सबसे बड़ी फिक्र बना दे, और हमारा सबसे बड़ा ध्यान अल्लाह ताला इसको बना दे कि हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इसकी तरफ लगाओ, क्योंकि ये जो एक दिन की या एक दिन से भी कम की जिंदगी है, इसने तो गुजर ही जाना है। जितनी गुजर गई, पता नहीं आधी गुजर गई या फिर आधी से भी ज्यादा गुजर गई और आधी से भी कम रह गई है, शायद चंद दिन या चंद महीने और चंद साल ही रह गए हो, क्या पता। और वो जो जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली है, उसके अहवाल, उसके लिए काम, उसके लिए जो मेहनत है, अल्लाह ताला हमें वो जज्बा, वो शौक और वो ताकत, वो हिम्मत अता फरमा दे, और वो फिक्र अता फरमा दे कि हम थके ना उसके लिए मेहनत कर करके, और अल्लाह ताला करा ले कुछ उस दिन के लिए हमसे। यौम इज़िल्ला तनफ़ाउ शफ़ातु, वो दिन वो होगा जिस दिन सिफारिश काम नहीं देगी, कि जब इंसान अब कांप रहा है ना और कहता है कि हाय हाय कोई आ जाए, हाय अब कौन, किसको देखूं, कौन किसको कहूं, किसको पकड़ूं, तो शिफात काम नहीं देगी, इल्ला मन अदीना लहुर रहमान, सिवाय इसके जिसको इजन दे रहमान, व रदिया लहु कौला, और रहमान पसंद करे उसके लिए बात को। आप देख ले दोबारा रहमान का लफ्ज आया, वो तो रहमान है, रहमान वो होता है एक्सट्रीमली ज्यादा, एक्सट्रीम रहम करने वाला, इसकी रहमत की इंतहा ना हो। वो किसी को इज़्ज़त दे दे तो ही उस दिन वो सिफारिश कर सकेगा और वो पसंद कर ले उसके लिए बात करना। पहले कह दिया शिफात किसी को नफा नहीं देगी, याद रखिए काफरों के यहाँ शिफात का एक और कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे कयामत अव्वल तो आनी ही नहीं है, और अगर आएगी भी तो हमारे पास बड़ा अच्छा इंतजाम है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो कहते हैं हम इन बुतों की पूजा इसलिए सिर्फ करते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर दें और वहां पे हमारी सिफारिश कर दें, तो अल्लाह ताला ने बता दिया सिफारिश ऐसे नहीं होगी, सिफारिश उस के लिए, उसको सिफारिश करने का, इल्ला मन अदीना, जिसको इजाजत दे, यानी आप नहीं सोच सकते कि मेरे लिए फलां सिफारिश कर देगा, जी आप मेरे लिए सिफारिश कर देना। अब आप दुनिया में किसी को कह रहे हैं जी आप मेरे लिए सिफारिश कर दें, आपको क्या पता है इसको अल्लाह का इज़न मिले कि नहीं मिले। अल्लाह ताला जिसको इजाजत देगा वो ही सिफारिश कर सकेगा, खुद नहीं कोई आगे बढ़ के। जैसे दुनिया में तो माँ बाप अपने बच्चों की सिफारिश करते हैं ना, झूठी चाहे सच्ची, अपने बच्चों को अच्छा बना बना के पेश करते हैं, कहीं नौकरी दिलानी है, कहीं रिश्ता डालना है, कहते हैं मुझे हमारा बच्चा तो इससे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं, हाँ इससे कोई लायक ही नहीं, इससे ज्यादा शरीफ ही कोई नहीं। तो कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं अपने बच्चों की सिफारिशें करने, लेकिन वहां पे कोई माँ बाप नहीं खड़े हो जाएंगे औलादों की सिफारिश करने के लिए, मगर जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। अब यहाँ पे तो इजाजत की जरूरत नहीं होती, खुद नेचुरली हम करते हैं ना कि नहीं जी हमारा बच्चा है, मैं नहीं सिफारिश करूंगी, मैं नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा, वहां पे कोई नहीं खड़ा होगा, किसी की मिजाल नहीं होगी कि वो किसी के लिए सिफारिश करे। और दूसरा वरौदी अल्लाह कौला, और पसंद करे उसके लिए बात को, यानी जिसकी बात से भी अल्लाह राजी हो, जिसकी बात से अल्लाह राजी हो जाए उसको यह हक मिलेगा, या जिसके लिए सिफारिश करी जा रही है उसकी किसी बात से अल्लाह राजी हो उसके लिए सिफारिश का इज़्ज़त देगा। और मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह की पसंद का कलमा वो है कि यानी उसका आखिरी कलाम दुनिया से जाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह हो, उसके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा, क्योंकि इस कलमे से अल्लाह ताला राजी होता है। और इसी तरह और अल्लाह ताला किस बात से राजी, किस कौल से अल्लाह राजी होता है? कुरान पाक के पढ़ने से, नमाज से, कलमा तैयबा से और जिक्र अजकार से, इन चीजों से अल्लाह ताला खुश होता है। तो जो ये काम करेगा उन उनके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा कि उनकी सिफारिश कर दी जाए। और सिफारिश के लिए देखिए यहाँ पर तो इतनी बात कही गई, दो बातें कही गई, लेकिन वैसे सिफारिश के लिए तीन शरायत है। एक तो ये मन अदीन लहु रहमान, कि कोई खुद खड़ा होके नहीं कर सकता, मैं करूंगा जी फलां की सिफारिश, मैं हूं इसका बाप, मैं हूं इसका दादा, ये मेरा पसंदीदा पोता, मेरा फेवरेट, ये मेरा शौहर, या ये मेरी बीवी, या ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को कैसे ऐसे देख सकती हूँ, मैं तो सिफारिश करूंगी करूंगी, मुझे नहीं कोई रोक सकता। ऐसे नहीं कोई कर सकेगा, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देगा वो करेगा। फिर वरदिया नंबर टू, रदिया लहु कौला, इसकी बात को अल्लाह ने पसंद किया हो, जिसकी बात से अल्लाह ताला राजी हुआ हो, ठीक है, उसको उसके लिए होगा। और तीसरी शर्त सूरह अंबिया आयत 23 है, उसके अंदर है कि जिसकी सिफारिश की जा रही है वो भी अल्लाह ताला ने अप्रूव की हो कि इसकी सिफारिश की जाए तो वो उसकी सिफारिश की जा सकेगी, ठीक है। वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, सूरह अंबिया 28 में है, 23 नहीं है। वो उसी की सिफारिश करते हैं जिससे अल्लाह राजी हो। इसका मतलब ये नहीं है को उठ के किसी चोर उचक्के काफिर मुशरिक इसकी सिफारिश करना शुरू जाए, क्योंकि मैं खुद बहुत नेक हूं, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी सिफारिश करूं, मुझे ये बड़ा पसंद है। नहीं, जिसके लिए अल्लाह पसंद करे, इस बंदे को अल्लाह ताला चाहता है कि इसको बख्श दे। तो असल में शिफात ऐसे नहीं है कि बस मर्जियां चल रही हैं, मेरी मर्जी है तो मैं सिफारिश करना शुरू कर दूं, या जिसके लिए मेरी मर्जी, अगर अल्लाह ने इज्जत भी दे दिया ना किसी को, तो ऐसे नहीं होगा कि अपनी मर्जी से, अब मेरा दिल करता है फलाने को, ये बन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ये मेरी फलां थी, ये मेरी कुलीग थी, इसके लिए मैं सिफारिश करूं, नहीं, बल्कि जिसके लिए अल्लाह ताला जिससे राजी होगा उसी के लिए करवाएगा सिफारिश, यानी वो भी चूज अल्लाह करेगा जिसने करनी है, जिसके लिए करनी है वो भी अल्लाह ने चूज करना है, और जिसकी बात से राजी होगा उसके लिए सिफारिश होगी। और सिफारिश या शिफात दो तरह की होगी, एक तो शिफात उज़्मा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे कि या अल्लाह लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए, क्योंकि लोग इतने परेशान होंगे कयामत के दिन, इतनी दहशत होगी, इतनी मुश्किल में पड़े होंगे, इंतजार कर करके खड़े में इंतजार कर रहे हैं और इंतजार खत्म नहीं हो रहा, ना हिसाब किताब शुरू हो रहा है, तब लोग जो आपको वो लंबी हदीस पता है कि लोग आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम के पास, ईसा मूसा अलैहि सलाम, फिर ईसा अलैहि सलाम, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शिफात करेंगे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा, जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे और फिर आपकी शिफात कबूल की जाएगी और लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। और दूसरी शिफात ऐसे है कि जैसे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जैसे हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी की एक दुआ कबूल होती है, बस हर नबी ने वो दुआ जल्दी मांग ली यानी दुनिया में, और मैंने इस दुआ को कयामत के लिए अपनी उम्मत की शिफात के लिए रखा है कि मेरी उम्मत में से हर उस शख्स के ये हासिल होगी जो इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफाअत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कोई जहन्नुम में ही नहीं जाएगा, कोई तो जहन्नुम में जल जल के कोयला हो चुके होंगे। जैसे वो आती है मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज तो दोजख में होंगे, तो वो लोग जो दोजख के मुस्तहिक है वो दोजख में जलते रहेंगे, ना मरेंगे ना जिएंगे, पता नहीं कितना अरसा गुजरेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उनके गुनाहों की वजह से दोजख में डाला जाएगा, फिर उनको वो दोजख में जलते रहेंगे, फिर अल्लाह ताला उन पर एक ऐसी मौत तारी कर देगा, यानी उनको बेहोश कर दिया जाएगा या ऐसी मौत तारी हो जाएगी हत्ता के वो कोयला बन जाएंगे, तब शिफात की इजाजत दी जाएगी, फिर इन लोगों को ग्रो दर ग्रो निकाला जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिर्क नहीं किया था लेकिन गुनाह किए थे, फिर उनको दरिया में डाल के फिर इनको साफ किया जाएगा, अहले जन्नत मतलब इनसे कहा जाएगा कि अहले जन्नत इन पर पानी डालो, फिर इस तरह जैसे कीचड़ में से बीज निकलता है इस तरह वो उगेंगे साफ सुथरे होके। ये तो कोयला बन चुके होंगे ना, एक दुनिया की जरा सी आग उंगली पे ही लग जाए तो इंसान तड़प के रह जाता है, कहाँ के पूरा जिस्म जहन्नुम की आग में जल रहा, और लोग इतने आराम से कह देते हैं कोई बात नहीं है कि फिर थोड़े दिन रह लेंगे, तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह जहन्नुम की तो हमें शक्ल भी ना दिखाना या रब, बिजली किसी तेजी से उसके ऊपर से गुजार देना। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजम औसत की ये रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रदी अल्लाह अन वो बयान करते हैं कि हम नबी अलैहि सल्लातु वसल्लम के साथ सेहन में बैठे हुए थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहन उनके सेहन में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका चेहरा चमक रहा था, तो हमने पूछा या रसूल आप किस वजह से इतने खुश हैं, तो आपने फरमाया अभी अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहि सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बशारत दी है कि अल्लाह अज्जा व जल ने मुझे शिफात अता फरमाई। हमने अर्ज किया या रसूल क्या वो सिर्फ बनू हाशिम के लिए है, आपने फरमाया नहीं। हमने अर्ज किया क्या वो सिर्फ कुरैश के लिए, आपने फरमाया नहीं। हमने अर्ज किया क्या वो आपकी उम्मत के लिए, आपने फरमाया हाँ मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए, जो गुनाहों से बोझल होंगे उनके लिए मेरी सिफारिश होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि कयामत के दिन सबसे पहले अम्बिया शिफात करेंगे, फिर शुहादा शिफात करेंगे, फिर मुअज्जिनीन शिफात करेंगे, नहीं शिफात का हक अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को देगा। और फिर ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जो है ना, जब उन लोगों को नहीं पाएंगे जन्नत में जिनको वो दुनिया में पहचानते थे, तो फिर वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाके उनका जिक्र करेंगे, वो उनकी सिफारिश करेंगे और उनकी शिफात कबूल की जाएगी और उनको तुलाका कहा जाएगा, यानी आजाद करदा। अब वो आबे हयात में उनको डाला जाएगा तो फिर वो उगेंगे और फिर सही होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफात करेंगे और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम भी शिफात करेंगे, मगर कोई भी शिर्क वाले के लिए शिफात नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोगों को उनके गुनाहों पर अजाब दिया जाएगा, ये ना कोई समझे कि वो मुसलमान है तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात कर देनी हमारी, बस हमने पार ही हो जाना, हमें तो कुछ भी नहीं कभी होना, हम जितने मर्जी गुनाह करते रहे हम तो उम्मती हैं और बस उम्मती होना ही हमारे लिए काफी है, ये हमारे लिए इनफ टाइटल है। आपने क्या कारनामा किया, अपना कारनामा बताए ना, आपने खुद दरखास्त दी थी कि मैं उनकी उम्मत में से हो जाऊं, आपके ऊपर तो बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उनके उम्मत ही हैं, तो अब तो कोई भी और नबी नहीं आएगा उनके बाद, अब जो नबी काम किया करते थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का, आगे वो आपके जिम्मे है, तो आपकी तो ड्यूटी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लिहाजा आपका काम भी उस मुताबिक का होना चाहिए, उम्मती होने का हक तो कोई अदा नहीं किया, सिर्फ टाइटल लगा के घूम रहे, ये कैसे बात हो गई। अब एक बंदा कहे जी मैं तो सदरे मुमलिकत हूँ, मैं तो सदर हूँ, मैं तो सदर हूँ, काम वो कोई सदर वाला करता नहीं, ना वो सदर के ऑफिस में बैठता है, ना वो कोई फैसले करता है, ना वो कोई अपनी कौम की खैरखाई करता है, कुछ भी काम नहीं करता, बस ये बस मैं जी सदर हूँ, मैं सदर हूँ, बस झंडे वाली गाड़ी में घूमता रहता, उसको सदर कहेंगे क्या। तो ये तो उल्टा हमारे खिलाफ ना उस दिन एक हुज्जत बन जाए, इसलिए कि शिफात ही नहीं होगी, हक में ही नहीं होगी, सिर्फ खिलाफ भी होगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फरमाएंगे, सूरह फुरकान में आता है कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ भी बात कहेंगे कि
कि अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, वो ये फरमाएंगे उस दिन, सिर्फ हक में नहीं होगी, खिलाफ भी होगी। कुरान भी यहाँ तो हक में शिफात करेगा, तो कुरान को भी इजाजत दी जाएगी कि ये भी सिफारिश करे, ये भी उठ के खड़ा होगा, ये भी कहेगा या अल्लाह ये बंदा मुझे रातों को पढ़ा करता था, मैं इसको जगाता था रात को क्योंकि ये मेरे साथ मसरूफ रहता था, अल्लाह तू मेरी सिफारिश इससे हक में कबूल फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जो है ना, कुरान हुज्जतुल्लाह और अलैक, कुरान हुज्जत बनेगा तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ, यानी खिलाफ भी हुज्जत बन सकता है कि कुरान कहेगा कि अल्लाह इसने मुझे पसे पुश्त डाल दिया था, ये तो कभी उसने मुझे देखा ही नहीं। हम देख ले हमारे घरों में कुरान कितनी दफा निकाला जाता है, कितनी दफा पढ़ा जाता है, कितनी दफा उसकी जियारत होती है, हर दिन होता है, हफ्ते में एक दफा होता है, महीने में एक दफा होता है, या सिर्फ रमजान के रमजान होता है, खुद सोच ले। तो ये भी सिफारशी बन सकता है, और जिसने इसको सिफारशी बनाया तो मुख्तलिफ लोग हैं जो शिफात करेंगे, मुख्तलिफ लोग हैं, कुरान है, अंबिया है, सुलहा है, सालेहीन है, शुहदा है, मौजिनीन है, और रोजा भी क़यामत के दिन शिफात करेगा कि मैंने इसको भूखा प्यासा रखा, अल्लाह मेरी शिफात इसके हक में कबूल कर ले। और फिर मोमिन और भी मोमिन है, जैसे कि एक जगह पे आता है कि क़यामत के दिन बच्चों को भी शिफात के लिए इजाजत दी जाएगी, वो बच्चे जो के यानी नाबालिग थे या जो माँ के पेट में ही खत्म हो गए बच्चे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है कि ना तमाम बच्चा, यानी वो वाला बच्चा लेकिन जिसकी रूह पड़ गई हो, ऐसे नहीं है कि जो कच्चा बच्चा, वो नहीं, जिसकी रूह पड़ गई हो, बच्चा बन गया और रूह आ गई है उसमें, वो भी अगर मतलब मर गया, पैदा होते वक्त मर गया या फिर पेट में ही मर गया, वो भी अपने रब से झगड़ा करेगा कयामत के दिन, कहेगा मेरे माँ बाप को या अल्लाह दोजख में ना दाखिल किया जाए, उनको जब दोजख में होंगे भी अगर, तो वो झगड़ेगा कि मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, वो अपने माँ बाप को घसीटता हुआ लेकर आएगा और उनको जन्नत में दाखिल कराएगा, अल्लाह ताला उसको इजाजत देगा। फिर वो बच्चे जो फौत हो गए किसी के, छोटे बच्चे फौत हुए, कयामत के दिन उन बच्चों से कहा जाए कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, वो कहेंगे हमारे रब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे माँ बाप ना आ जाए। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें कहा है, तुम इनकार करते हो, तुम जाओ जन्नत के अंदर, वो कहेंगे अल्लाह हमने नहीं जाना हमारे माँ बाप जब तक ना आ जाए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी। ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो सुभान अल्लाह, इतने लोगों को शिफात का हक दिया जाएगा। और फिर देखिए ना, कहा जाएगा जिसके, हदीस में आता है जिसके दो कमसिन बच्चे जो हैं वो फौत हो गए, तो अल्लाह ताला उनको उसके लिए जन्नत में दाखिल कराने का सबब बनाएगा, इनकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देगा किसी को। तो हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूलल्लाह जिसके एक बच्चा फौत हुआ, तो आपने फरमाया जिसका एक फौत हुआ तो वो भी उसके लिए बनेगा इसी तरह। तो हज़रत आयशा ने फरमाया और जिसका आपकी उम्मत में से कोई कमसिन बच्चा भी पेश रो ना हो, उसको लेके ना जाने वाला, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं थी ना, तो आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत का पेश रो हूँ, ठीक है, मेरे फिराक से बढ़ के इनके लिए कौन सी मुसीबत है, अगर मैं नहीं हूंगा तो और कौन, उनके लिए तो मैं हूंगा। तो यानी आप ये देखिए कि कोई किसी का बच्चा नहीं भी हो तो वो भी ना गम करे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उस दिन सिफारशी बनाएगा। फिर देखिए ये भी हदीस में इब्न माजा की आता है कि जिसने कुरान मजीद पढ़ा और हिफ्ज किया, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसको अपने घर के ऐसे 10 अफराद के लिए शिफात करने वाला बना देगा जो दोजख के मुस्तहिक हो चुके होंगे, तो अल्लाह ताला उनको भी इजाजत देगा। सुभान अल्लाह, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से वो लोग भी जो दोजख में हैं वो भी आखिर में निकाल लिए जाएंगे, जिनके दिल के अंदर ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। और इसी तरह हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब मुस्लिम की हदीस है कि वो फरमाते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह अबू तालिब आपका दिफा करते थे, आपकी मदद करते थे, आपके लिए लोगों से दुश्मनी करते थे, तो आपने उनको कोई नफा पहुंचाया, यानी आपकी रिसालत से उनको भी कोई फायदा होगा, तो आपने फरमाया वो टखनों तक आग में होंगे, और अगर मैं ना होता तो वो दोजख के सबसे निचले तबके में होते, यानी वो एक काफिर होके भी, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की वजह से निकल तो नहीं सकेंगे वहां से। जाहिर है कोई भी मुशरिक निकल नहीं सकता, इसीलिए इतना जरूरी है कि हमारी मौत आए तो ईमान पे मौत आए। बस ये दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ईमान पे हमें दुनिया से उठाना या अल्लाह, क्योंकि ईमान के बगैर नहीं है कुछ, फिर तो कोई खलासी है ही नहीं, कोई उम्मीद है ही नहीं। जो ईमान पे दुनिया से ना गया वो फिर उम्मीद ही उसकी खत्म है। ठीक है, जहां दूसरे जहां तक है ठीक है, बहुत बहुत अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह तू एक झलक भी ना जहन्नम के दिखाना। कोई अरसा रहेंगे वो जहन्नम में, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद तो है ना कि कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे। वर दूसरे तो कभी भी नहीं, खालिदी ना फिया आबादा 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 है सूरह बैयना में फरमाया ना, आबादा वो उसके अंदर रहेंगे। सूरह बैयना में नहीं है, कहीं और है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हजरत अनस ने देखे कैसे वो भी सवाल करते थे ना, कहते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कयामत के दिन आप मेरे लिए शिफात करेंगे, आपने फरमाया मैं करने वाला हूँ। तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं आपको कहाँ पे वहां पे ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए सहाबा के सवाल भी कितने प्यारों, इतनी मखलूक है, मैं कि तो मुझे किधर पता। आप यहाँ पे हज पे किसी को ढूंढने लगे, आप ढूंढ सकते हैं कोई? हालांकि लाखों का मजमा होता है बस, और वहां पे तो पता नहीं अरबों खरबों कितने लोग, आदम अलैहि सलाम से लेके आखिर तक कितनी दुनिया खड़ी, मैं आपको किधर ढूंढूंगा। आपने फरमाया कि तुम मुझे सिरात पे तलाश करना। अल्लाह अकबर, सिरात पे तलाश करना, क्योंकि जो जब अंबिया दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना कि अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह जब हर एक कहेगा रब्बी सल्लिम जब अल्लाह मुझे बचा ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहते हैं मैंने अर्ज किया अगर मैं सिरात पे आपसे मुलाकात ना कर सकूं, आपने फरमाया तो मुझे मीजान के पास फिर तलाश करना। मैंने अर्ज किया अगर मैं मीजान के पास भी आपसे मुलाकात ना कर सकूं, फरमाया फिर तो मुझे हौज के पास तलब करना, क्योंकि मैं इन तीन मकामात में से कहीं से तजावज नहीं करूंगा, यानी यहीं पे कहीं होऊंगा इन तीनों जगहों पे। आपको पता है नबी अलैहि सलातो वसलाम करोड़ों दरूदर से करोड़ों दुरूद अलैहिस्सलाम मेरे नबी पे, के फरमाया मैं अपने हौज पे अपनी उम्मत का इंतजार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वहां पे भी उनको उम्मत की फिक्र नहीं गई, वो तो आराम से जाके जन्नत में बैठ जाए, उनको क्या अपनी फैमिली को लेकर, उनकी फैमिली तो वैसे ही जन्नत ही है, जन्नती जन्नतों की बशारतें जिनको मिल गई, जिनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सलाम मिल गए, जिनको बशारत मिल गई है जन्नत के सरदार होंगे, नौजवानों के सरदार होंगे। बीबी फातिमा को फरमा दिया जन्नत में मेरे साथ मिलोगी, सबसे पहले मेरे से मिलोगी। अल्लाह अकबर, तो उनको क्या परवाह है कोई आएंगे 1400 साल बाद, लेकिन उनकी कितनी परवाह की कि वहां पे तुम्हारा इंतजार करना। तो याद रखना फिर आपने अपने नबी को ढूंढना हुआ तो इन तीन जगहों में से ढूंढ लेना, यहाँ पे मिलेंगे। यालमु मा बैना एदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके सामने उनके आगे और जो उनके पीछे, वला युहीतुना बिही इल्मा, और नहीं वो अहाता कर सकते उसका इल्म के एतबार से। यानी आगे पीछे मतलब क्या, जो दुनिया में किया और जो आखरत के अहवाल है वो सब उसको मालूम है, जो दुनिया में वो करते रहे, और फिर जो हो चुका जो होने वाला वो भी सब मालूम है, और आगे जो दुनिया के आमाल थे वो भी मालूम है, और जो आखरत में सवाब या सजा मिलने वाली है वो भी मालूम है, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है वो भी उसको मालूम है, कौन उस दिन क्या बोलेगा वो भी उसको मालूम है,
कोई अहाता ही नहीं कर सकता उसके इल्म का, उसका इल्म इतना वसी है। यहाँ पे बात ये क्यों आई, इसलिए कि सिफारिश ही शिफात की पहले बात आ रही थी ना, तो शिफात तो वही करता है जब वो कोई कहता है ना, देखिए हम जब किसी की सिफारिश करने जाते हैं तो हम कहते हैं मैं इसको जानती हूँ, मेरी गारंटी है इसके बारे में, मैं गारंटी देती हूँ ना, आप इसको छोड़ दें, आपने ऐसे इसको पकड़ लिया होगा, मेरे ख्याल आपको कोई गलत फहमी होगी, मुझे पता है ना ये कैसा है, ठीक है आप ये कहते हैं ना। फिर वो पुलिस भी सोचती है कि भाई ये इतना मोतबर इंसान इसकी सिफारिश कर रहा है, तो वाकई पता नहीं है कोई शरीफ ही आदमी होगा, हमसे ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन अल्लाह ताला के पास ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है तो हम सिफारिश कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अल्लाह ये कैसा है, कि इसलिए कि उसका तो इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह तुझे नहीं पता, सोचा शायद ऐसे ही गलती से पकड़ा गया, मुझे जो पता है ना, मैं दुनिया में इसको देखती थी ना, मेरे साथ ही रहता था, ये मेरे घर में रहता था, ये मेरे घर में रहती थी, ये मेरी हमसाई थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब मुझे पता है ना ज्यादा, ये नहीं ना कह सकते वहां, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो कोई इजाफा नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता मुझे पता है ना अल्लाह ये कैसा था उसके। हाँ तो सिफारिश फिर उसी की हो सकती है जिसको वो इज्जत दे दे, इसलिए कि सारा इल्म तो उसके पास ही है, उससे ज्यादा किसको पता होगा, हम तो किसी को जानते होंगे तो उसके जाहिर को जान सकते होंगे, या उसके साथ 50 साल से रह रहे होंगे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत उसको उसकी आदत उसके अतवार को जानते होंगे, अल्लाह ताला तो उसको तब से जानता है जब वो माँ के पेट में था, और उससे भी पहले जब वो था, अल्लाह ताला तो उसकी एक आंख के झपकने को भी जानता है और दिल के हर ख्याल को भी जानता है, वो तो दिलों की बातों को जानने वाला है, तो उसके आगे कौन खड़ा होकर ये कह सकता है कि मुझे पता है ना इसका, तो ये नहीं कोई कह सकता। अगला पिछला सब जानने वाला है और कोई अहाता कर ही नहीं सकता उसके इल्म का। तो वो सोचेंगे किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो, किसके आगे उस दिन खड़े होना है, कोई कह नहीं सकेगा नहीं अल्लाह आपको क्या पता, दिल से तो मैं अच्छी थी, नीयत तो मेरी अच्छी थी। लोग यहाँ पे तो वो करते हैं ना कि नहीं, अगर देखिए अगर सामने के अमल ऐसे हैं ना, दिल की बड़ी अच्छी है, या कहते हैं ना मेरा दिल वैसे बड़ा साफ है, ये आप यहाँ पे तो कह सकते हैं किसी को मनाने के लिए, किसी को कहने के लिए, मगर वहां पे जाके नहीं कह सकते, वहां पे जाके नहीं कह सकते किसी को आप अल्लाह मेरा दिल तो बड़ा अच्छा था, मैं बस ये मेरे काम ऐसे हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, वानत अल वुजूह, चेहरे उसके सामने झुके होंगे, आनत जलील, उसके सामने नीचे, उसके सामने दबे हुए, शेरों की बात खास तौर पे इसलिए की गई कि चेहरे पे ही इंसान की जिल्लत भी नजर आती है, तकब्बुर हो तो भी नजर आता है, आजी हो तो भी नजर आती है, खुशी हो तो भी नजर आती है, चेहरा जो होता है ना अक्कास होता है इंसान की अंदर जो है ना, उसकी अक्कासी चेहरा करता है, तो इनके इंसान के अंदर के हवाल का पता देता है, तो चेहरे चेहरों की हालत उस दिन ऐसे होगी, किसी चेहरे पे तकबर नहीं होगा, राउनत नहीं होगी, कोई एरोगेंट नहीं होगा, बड़ा फिरौन भी अबू जहल भी देखो यहाँ पे कैसे थे, वहां पे जाके सारे चेहरे जलील होंगे अल्लाह ताला के आगे, इंसान झुके होंगे अल्लाह के आगे, तो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, इसलिए क्योंकि वो रब की जात ही ऐसी है, वो जो हई और कयूम है, हई अल कयूम, हई वो जो जात जिंदा है और हमेशा जिंदा है, और एक है वो मुहयी और मुमीत भी है, हई है ना उसी से कि वो जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला। देखिए बाज अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स का कोई उसका उलट भी है ना, कि वो चाहे इज्जत दे, वो चाहे जलील कर दे, वो उस अव्वल और आखिर और इब्तदा और इंतहा और सब इस तरह उलट भी है, लेकिन हई का कोई उलट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मौत नहीं है, जो हमेशा जिंदा रहने वाला, और कयूम कायम करने से है, कायम कयाम है ना, कयाम करना होता है, खड़ा करना होता है, यानी हर चीज को कायम करने वाला, मेंटेन करने वाला, सस्टेन करने वाला, हर चीज की एग्जिस्टेंस जो है ना, या जो भी चीज चल रही है इस कायनात में, इस पूरे कारखाना कुदरत में, वो
उसके कायम रखने से कायम है, सिर्फ जिंदगी नहीं देता कायम भी रखता है, यानी हर चीज मोहताज है उसकी अपने कायम रहने के लिए। अगर एक बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसको सस्टेन रखना, उसको कायम रखना, ये भी तो एक काम है ना, ये भी तो एक चीज है, सिर्फ पैदा ही तो नहीं हो जाता, उसके बाद उसकी जो जिंदगी चलनी है उसके अंदर भी वो मोहताज है किसी का। कायनात की हर चीज अपने कायम रहने में मोहताज है अल्लाह ताला की, वो अल-कय्यूम है। और आपको पता है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि तीन सूरतें ऐसी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें इस्मे आजम है। और इस्मे आजम क्या है? अल्लाह ताला के नामों में से वो एक नाम, वो इस्म अल्लाह ताला का, जिससे उसको पुकारा जाए तो जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो वो इन तीन सूरतों में है, अल-बकरा, आले इमरान और सूरह ताहा में। और लोग कहते हैं कि ये जो हय्य और कयूम नाम है ना, वो इन्हीं तीन सूरतों में कॉमन है, तो शायद यही सूरत, यही आयत हो, यही नाम हो। लिहाजा इस आयत को भी पढ़ के हम दुआ कर सकते हो, ना आयतों को भी पढ़ के। आपको पता है सूरह बकरा में तो आयतल कुर्सी जो है वो, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 2 अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, और सूरह तहा में ये। तो इन तीनों आयतों को पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला को सबसे पसंद है कि उसकी तौहीद बयान की जाए, तो उसकी तौहीद बयान करके भी आप, जैसे असलाफ जो हमारे थे ना बुजुर्ग, पहले गुजरे हुए नेक लोग, जब दुआ करते थे तो कुरान की आयात पढ़ते चले जाते थे जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद, उसका इख्तदार, उसका इख्तियार, उसकी बादशाहत, उसकी बुलंदी, इसकी बातें हो, उसकी अजमत की बात हो, तो वो वाली आयात पढ़ते चले जाते थे और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते थे। जैसे अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा दुआ जो अल्लाह के नजदीक है, जो अराफा के दिन की है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु वला हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आप देखो, इसके अंदर कुछ मांगा कुछ भी नहीं गया, अल्लाह ने बिन मांगे ही दे देने। उसकी तौहीद उसको इतनी पसंद है कि जब इंसान बयान करता है उसमें तौहीद ही है। तो अल्लाह ताला हय और कयूम है, इंसान जब उसको हय और कयूम मानता है ना कि अल्लाह मेरी जात, मेरी हस्ती और ये सारी कायनात तेरे कायम रखने से कायम है, ऐ अल्लाह तू हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, तेरा ना कोई आगाज और ना कोई इंतहा है, कोई दिन ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला उस दिन पैदा हुआ ना, उसे बिल्ला अल्लाह ताला हमेशा से, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, मैं मानता हूँ अल्लाह तो हई है और अल्लाह तो कयूम है, तो खुद भी कायम है और कायम रहने वाला है, जो चीज भी कायम है वो तेरे कायम रखने से कायम है। अल्लाह कोई चीज खुद इतनी ताकत नहीं रखती कि वो कायम रह सके जब तक तू ना उसको कायम रखे। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आए हैं, वक़द ख़ाबा मन हमला ज़ुल्मन, और तहकीक नामुराद हो गया जिस दिन जिसने उठाया जुल्म, उस दिन वो नामुराद हो गया। ख़ाबा कहते हैं खाली होने को, खाली होना, हर ख़यार से खाली हो गया। और जुल्म क्या चीज होती है? किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। और उसके बाद इंसानों के हक में ज्यादती करना, इंसानों के हकूक मार लेना, किसी को उसका हक ना देना, हक में कमी कर देना इंसानों के साथ, कहते हैं ना जिसने बड़ा जुल्म किया है, वो जो हम आम वर्ड्स जुल्म के बोलते हैं ना, बड़े जुल्म किए हैं इसने, बड़े जुल्म उठाए हैं उसने, तो ये क्या असल में होता है? उसके पीछे जाके क्या देखे तो पता चलता है उसका हक मारा हुआ, उसके साथ ज्यादती की भी है। जिसने भी कोई जुल्म किया होगा ना, तो जुल्म उस दिन अंधेरे बन जाएगा, अंधेरे। और जब अंधेरे बन जाएगा तो वो मुझे बताएंगे फिर अंधेरों के अंदर उस दिन इंसान का क्या हाल होगा, वो कयामत का दिन इतना मुश्किल, ऊपर से अंधेरे। हर चीज जो होती है ना, जुल्म का मतलब ही अंधेरा होता है, हर चीज जो यहाँ पे जैसे है ना उसी की पिक्चर आपको वहां पे नजर आएगी। जिसने यहाँ जुल्म किया होगा यहाँ पे अंधेरे अपने लिए इकट्ठे कर लिए, तो वो कयामत के दिन अंधेरे ही बन के सामने आएंगे।
तो जो शिर्क करता हुआ चला गया दुनिया से, तो वो भी तबाहो बर्बाद हो गया। उस दिन तो ये हाल होगा कि यानी अल्लाह ताला हर हकदार को उसका हक दिलाएगा। और अल्लाह ताला का हक क्या है? उसका हक ये है, वो हक रखता है कि हम ये माने कि अल्लाह तू एक है और तेरे साथ कोई शरीक नहीं है, किसी चीज में भी नहीं, ना तेरी खुदाई में, ना तेरी बादशाहत में, ना तेरी कुदरत में, ना तेरी इंसाफ में, ना तेरी रहमतों में, ना तेरी तेरी देन में, किसी जितने तेरे एट्रीब्यूट्स है ना, जितने ये सारे अस्माए हुस्ना है, इनमें किसी में भी कोई शरीक नहीं, ना तेरे इल्म में, तू अकेला है, अकेला है। ये है जिसको तौहीद कहा जाता है। और शिर्क यही है कि इनमें से किसी में भी किसी और को शरीक कर लिया जाए। लिहाजा अल्लाह ताला के साथ जिसने जुल्म किया है शिर्क करके, उसको भी उस दिन बदला देना होगा। और जिसने इंसानों के साथ जुल्म कर दिए है, तो इंसान तो छोड़े, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उस दिन अल्लाह ताला ने ऐसे हक दिलाने हैं ना कि बेसींग बकरी को भी सींग वाली बकरी ने मारा होगा, तो अल्लाह ताला इस बेसींग बकरी को सींग दे देगा, तू भी मार ले इसको, कि तेरा हक किसने मारा, तेरे साथ इसने ज्यादती की, आज तुझे सींग दिए जाते हैं, तू जाके इसको मार, उसी तरह जैसे इसने तुझे मारा था। हदीस कुदसी, अल्लाह अज्जा वजल फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, किसी जालिम के जुल्म को मैं अपने सामने से नहीं गुजरने दूंगा। यानी ऐसे ही कोई गुजर जाए, जुल्म किए में और जब जाता जाए। आप सोचिए, हम तो इतने न डर रहे हैं यहाँ पे, हमने तो बड़ी बड़ी चीजें ज्यादतियां करके, फिर उसके बाद डकार भी नहीं मारते, लोगों के माल खा लेते हैं, लोगों के साथ ज्यादती कर लेते हैं, उनके हकूक मार लेते हैं, हमें पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। और आज आप देखें, जो बेचारा कमजोर है उसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, तगड़े बंदे को तो फिर भी लोग उसका हक दे देते हैं, ना चाहते हुए या चाहते हुए, जैसे भी दे देते कि चलो अब क्या करें, फिर उसे डर लगता है ना, वो कुछ कर लेगा। लेकिन जो कमजोर है, वो बेचारा माड़ा बंदा है, खुद वो अपना ले नहीं सकता, उसके पास कोई ताकत नहीं, ना उसके पास कोई सिफारिशें हैं, ना उसके पास कोई कॉन्टेक्ट हैं, कहाँ से लेगा। तो हम भी सोचते हैं इसको तो दबाओ अच्छी तरह, ये करेगा क्या, इसकी मिजाल क्या, ये सार उठाएगा, इसका कौन पूछने वाला है। वो सारी जिंदगी रोता धोता रहता है, कोई परवाह ही नहीं करता, रोते रोते ही दुनिया से चले जाते हैं, हकूक मारते हैं लोग, सिर्फ ये नहीं कि कोई जाके यतीम का ही हक मार रहा है, घरों के अंदर बच्चे वालदैन के हक नहीं दे रहे, अगर वालदैन बच्चों के नहीं दे रहे, बहन भाई आपस में एक दूसरे का हक नहीं दे रहे, मियां बीवी एक दूसरे के हकूक मार रहे हैं। देखें, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई माशरे का पिसा हुआ तबका है, जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तो ये दौर आ गया ना, कुर्बे कयामत है ना, कि जिसके पास जोर है ना, वो कहता मैं दूसरे को दबा ही दू, इसको पीस ही दू, मेरा यहाँ पे जोर चल रहा है ना, यहाँ पे नहीं मैंने छोड़ना, जिसको जिधर मौका मिल रहा है, वो चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सियासतें हो, हुकूमतें हो, जिधर आप देख ले, ऐसा नफसा नफसी का आलम है, उसी के अंदर भी खौफे खुदा नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं। हर कोई कहता मैं इधर से छीन, उधर से झपट लू, उधर से कर लू, ये कमजोर है इसको दबाऊ, इसको पीसू, इसको कैसे करूं, कोई ये नहीं सोचता कि इसका मुझे जवाब देना होगा, ये भी तो जुल्म है। जहां पे मिसकाल जर्रतिन, एक जर्रे के बराबर भी शर होगा, वो आगे ले आया जाएगा। मुझे बताइए, बड़े बड़े जुल्म कहाँ जाएंगे, कई जायदादों के अंदर फ्रॉड किए हुए, कई विरासतों के अंदर नहीं दिया हुए हकूक, कहीं वैसे ही औरत अपने शौहर को हक नहीं दे रही, जी कहीं शौहर है वो बीवी को छोड़ा हुआ, वो कहता मेरी क्या कर लेगी ये, मेरा वो नहीं उसका हक देता, कहीं बच्चे वालदेन को ऐसा सता रहे हैं कि उनको आंसुओं से रुला रहे हैं, जुल्म है ये सब जुल्म है। जुल्म की देखे ना अब उसका उलट क्या होता है, अदल, अदल में क्या होता है, हकदार को उसका हक देना। कौन है आज जो ये सोच के एक दूसरे को हक देता है कि भाई अगर मैं नहीं दूंगी ना, अल्लाह मेरे से पूछ करेगा, कौन है जो ऐसा है, किसी को नहीं परवाह है। इसलिए कि हर कोई सोचता है मेरे पास पावर है ना, मेरा आज चल रही है तो चलाओ,
आज मैं अपर हैंड रखती हूं ना, तो आज मैं अपनी मर्जी करूंगी। उसको याद ही नहीं रहता कि कोई अल्लाह ताला का भी हुक्म है, मुझे इसकी पूछ होनी है, मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं आज किसी के साथ ज्यादती कर रही हूँ, कल क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगी? नहीं, बस मेरे पास बाबर है ना, और दूसरा कुछ कर नहीं सकता। कहाँ जाएगी ये बेचारी? इसके पीछे को पूछने वाला नहीं, बाप इसका फौत हो गया, बहन भाई इसके पास साथ नहीं खड़े हुए, जो मर्जी करूं कहाँ कहाँ हम जवाब देंगे। जुल्म हर तरफ हो रहा है। अच्छा, कई जगह मजलूम वो भी जालिम बन जाते हैं, एक जगह वो पिस रहे हैं, दूसरी जगह वो अपना जगह जुल्म कर रहे हैं। एक जगह जहां पे हम अपने ऊपर तो जुल्म को बहुत याद रखते हैं, लेकिन हम जो जुल्म कर रहे होते हैं वो नहीं हमें याद होता। तो ये अंधेरे हैं, जो यहाँ पे अंधेरों में जिंदगी गुजारता है वहां पे भी अंधेरों में ही रहेगा। ये अंधेरे हैं, आज नजर नहीं आते। अगर किसी से जुल्म आज मैं सह रही हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी किसी और के ऊपर जुल्म कर रही हूँ? जिधर मेरा चल रहा है मैं वहां जुल्म कर रही हूँ, जिधर मेरी नहीं चल रही उधर मैं सहने वाली बन गई, जिधर मेरी चल रही उधर मैंने जुल्म शुरू कर दी। लड़ाई घर में शौहर के साथ हुई और मार मार के बच्चों का बुरा हाल कर दिया, किसने आपको ये राइट दिया? एक बच्चे के हक था कि वो दुनिया के अंदर आए, उसको पेट में ही मार दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। देखे ना, ये सारे जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। देखें जहां जहां पे हम जुल्म कर रहे हैं उनको देखें, मेरे से जुल्म ना हो जाए, मेरे से ज्यादती ना हो जाए। अगर आज मेरी चल रही है ना, तो कल भी ऐसे चलती नहीं रहनी, वो रब देख रहा है। अगर मैं सास हूं, अगर मैं बहू हूं, अगर मैं नंद हूं, अगर मैं भाभी हूं, मैं किधर किधर क्या क्या करने लगी, मेरे तो कई रोल्स हैं ना, कई शेड्स हैं, कहीं तो मेरी भी चलती है, कहीं मैं दबती हूं। जहां मेरी चलती है वहां मैं क्या हूं? अरे किसी को जवाब नहीं देना, किसी के आगे सच्चा नहीं होना। लोग मुझे कहें बहुत अच्छी है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो ये है कि अल्लाह के आगे खड़े होना, जो अंदर और बाहर सबको जानता है, घरों के अंदर की बातों को भी जानता है, घरों के बाहर की बात भी जानता है। सल्लाह हमारा बातिन हमारे जाहिर से ज्यादा अच्छा कर देना। आज हम जाहिर को संवारते हैं कि लोगों के सामने अच्छे नजर आ जाए। वो ही बात है ना, वो बड़ी प्यारी बात है। एक बादशाह जा रहा था अपने सारे अपने वुजरा उनके साथ जा रहा था, घोड़े पे किसी जगह से गुजरा, तो एक पुल पे एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। उसने कहा है बादशाह, ये बता कि इस पुल पे फैसला करना है मेरे साथ कि पुल सिरात पे करेगा? बादशाह कांप गया, उसने अपने सारे जो पूरा अपने साथ सारा लश्कर था उसको खड़ा कर दिया, घोड़े से नीचे उतरा और कहने लगा, हाँ इस पुल पे ही फैसला कर ले, वहां पे तो नहीं मैं फैसला दे सकूंगा, वहां पे नहीं मैं तेरा हक दे सकूंगा, तो यहाँ पे जो तूने लेना है वो ले। हाँ, कई जिनको खुदा खौफी होती है ना, उनको यही होता है कि यहीं पे फैसले कर लो, यहीं पे हकूक दे दो, वहां पे नहीं हम दे सकेंगे, वहां पे तो अपनी नेकियां ही देनी पड़ेंगी, फिर इसके बगैर कोई वहां से गुजर नहीं सकेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहीं पे माफ करा लो, कर चुके हो तो माफ करा लो, किसी तरह कॉम्पेंसेट करा लो। मैंने आपको हजरत उमर बिन आस का वाकया बताया था ना, किस तरह से हजरत उमर के दरबार में जिस वक्त शिकायत लेने वाला शिकायत लेकर आया, उसने कहा मुझे 100 कोड़े इन्होंने मार दिए और नाजायज मारे हैं। मिस्र के हाकिम थे उस वक्त, हजरत उमर ने फरमाया तुम बदला ले लो, तो हजरत उमर बिन आस ने कहा कि इस तरह से होने लगा तो फिर हमारा हाल क्या होगा? उन्होंने उसको मना लिया किसी तरह कि हर कूड़े के बदले ना तुम्हें 2 अशरफियां दूंगा, तो 200 अशरफियां दे के उसको मना लिया। तो यहाँ पे मना ले, चाहे पैसे दे के मनाने पड़े, यहाँ पे दे सकते हैं पैसे आप, अगर पैसे दे के कोई मान जाता है कि उसको पैसे ही इसका वो है, उससे मान जाता है वो दे दे, गिफ्ट से मान जाता है वो दे दे, किसी तरह भी करके यहीं पे मना ले, यहीं पे खलासी करा ले, यहीं पे अदले बदले हो सकते हैं, वहां पे नहीं हो सकेंगे।